पुष्कर जी की बात सुनकर अरुणिमा एकदम से हैरान रह जाती है। उसे ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि पुष्कर जी कभी इस तरह की बातें उससे कह सकते हैं। उसे तो हमेशा लगा था कि पुष्कर जी अपने वारिस को लेकर बेहद गंभीर हैं, लेकिन आज जो कुछ भी वो कह रहे थे वो सुनकर अरुणिमा अंदर तक हिल जाती है। वो हैरानी से उन्हें देखते हुए बोलती है, आप क्या कह रहे हैं पापा जी? आस्तिक को बच्चे पसंद नहीं हैं, और ये जानते हुए भी आप मुझ पर प्रेशर बना रहे हैं कि मैं बच्चा पैदा करूं? क्या आपको लगता है कि ये सही है? आपको पता है, आस्तिक ने सरोगेसी का रास्ता अपनाया था। अगर वो सरोगेसी सफल हो जाती तो इस वक्त कोई और औरत उसके बच्चे को जन्म दे रही होती। पुष्कर जी हंसते हुए कहते हैं, तो उसका दिमाग इतना चल गया कि गद्दी पाने के लिए वो सरोगेसी से वारिस पैदा करने की सोच रहा है। वैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बच्चा तुम पैदा करो या कोई और, मुझे तो बस अपने खानदान के लिए वारिस चाहिए। और अगर तुम वो वारिस ला रही हो तो तुम्हें होशियार रहना चाहिए। आस्तिक को ये बात तब बताना जब वो पूरी तरह तुम्हारे काबू में हो, वरना वो बच्चों से इतनी नफरत करता है कि तुम्हारे बच्चे को खत्म भी कर सकता है। अरुणिमा के कदम अनायास पीछे हो जाते हैं। वो हैरानी से पुष्कर जी को देखती है। आप इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कैसे कह सकते हैं, जैसे कि बच्चों की जान का कोई मोल ही नहीं है आपके लिए? आस्तिक के लिए ये बच्चा मायने नहीं रखता, क्योंकि उसे कोई बच्चा नहीं चाहिए, लेकिन आपके लिए तो मायने रखता है ना? पुष्कर जी बेफिक्री से हवा में हाथ उठाते हुए कहते हैं, हाँ बिल्कुल मायने रखता है। अरे वो मेरे खानदान का वारिस होगा, माफिया का अगला किंग होगा। तुम्हें क्या लगता है वो मेरे लिए मायने नहीं रखता? बहुत मायने रखता है। अरुणिमा हैरानी से कहती है, बस इसलिए? क्योंकि वो आपके खानदान का वारिस होगा? क्या इसके अलावा उसकी कोई अपनी पहचान नहीं होगी? पुष्कर जी गंभीरता से बोलते हैं, और क्या पहचान चाहिए उसे? उसने तुम्हारी कोख से जन्म लिया है, उसका पिता आस्तिक है, उसमें रायचंद खानदान का खून है। इसके अलावा और क्या चाहिए होगा उसे? दुनिया की हर चीज उसके नाम होगी, वो हमारे नाम से जाना जाएगा, हमारे खानदान से पहचाना जाएगा। अगर आस्तिक उसे जिंदगी देगा तो। अरुणिमा का दिल धड़कने लगा था, उसके हाथ पांव ठंडे पड़ गए थे। उसने धीरे से अपना हाथ पेट पर रखा। अभी तो सिर्फ एक महीना हुआ है और मेरे बच्चों की जान पर इतना बड़ा संकट? खुद उनके दादाजी इतनी बेपरवाही से उनके बारे में बात कर रहे हैं, जैसे जिंदा रहे तो ठीक वरना कोई बात नहीं। क्या मेरे बच्चों की यही कीमत है? अरुणिमा की आंखों में आंसू आ गए थे। वो जल्दी से दरवाजे का हैंडल पकड़ती है ताकि गिरने से खुद को रोक सके। उसने गहरी सांस लेकर खुद को शांत किया और चेहरा दूसरी ओर मोड़ते हुए कहा, मुझे लगता है अब आपको जाना चाहिए। आस्तिक अभी घर पर नहीं है और अच्छा नहीं लगेगा कि उसकी गैरहाजिरी में आप यहाँ आए हैं। अगली बार जब आप आएं तो फ़ोन करके आइएगा, वो भी तब जब वो खुद घर पर मौजूद हो। इतना कहकर अरुणिमा उनसे नज़रें चुराती है और तेज़ी से अपने कमरे की ओर बढ़ जाती है। लेकिन पुष्कर जी समझ चुके थे कि अरुणिमा के दिमाग में क्या चल रहा है। वो एक ख़तरनाक मुस्कान के साथ उसे जाते हुए देखते हैं और अपनी छड़ी के सहारे बाहर की ओर बढ़ जाते हैं। दरअसल पुष्कर जी को आस्तिक पर हुए हमले की खबर मिल गई थी, इसलिए वो हालचाल पूछने आए थे। आस्तिक ना तो उनका फ़ोन उठाता था और ना ही मैसेज का जवाब देता था। एक बार भी ना उन्होंने फ़ोन किया ना मैसेज, बल्कि सीधे मिलने चले आए। इस घर का पता उन्हें नीरज से मिला था। पुष्कर जी को अरुणिमा की प्रेगनेंसी के बारे में कैसे पता चला, ये बात हम बाद में बताएंगे। फिलहाल चलते हैं आस्तिक की ओर, जो अभी अभी आशिक बना हुआ अपनी गाड़ी में म्यूजिक प्लेयर पर गाना बजा रहा था। पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतज़ार। वो मुस्कुरा रहा था। ड्राइव करते हुए उसकी उंगलियाँ स्टीयरिंग व्हील पर लय में थिरक रही थीं। उसके चेहरे पर एक अनकही सी खुशी थी। वो उस पल को याद कर रहा था जब अरुणिमा ने कहा था, मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। इस समय रेड लाइट लगी हुई थी और आस्तिक उस लाल बत्ती को देखकर ऐसे मुस्कुरा रहा था जैसे उसे अरुणिमा का चेहरा नजर आ रहा हो। लेकिन तभी उसके दिमाग के एक कोने में ये बात आई कि अरुणिमा उसके साथ क्यों रहना चाहती है, जबकि आस्तिक ने उसे इतना परेशान किया है, उसे इतना टॉर्चर किया है। मगर अब आस्तिक इन सवालों में उलझना नहीं चाहता था। उसने अपने बेवकूफ़ी भरे सवाल को अगले ही पल गाड़ी की खिड़की से बाहर फेंक दिया और उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। उसे अपने दिमाग में चल रहे उस सवाल से अब कोई मतलब नहीं था। उसके लिए अब सिर्फ ये मायने रखता था कि अरुणिमा ने उसे वही स्वीकार किया है जैसा वो है। धीरे धीरे आस्तिक की गाड़ी एक बिल्डिंग के सामने आकर रुकती है और वो गाड़ी से बाहर निकलता है। बाहर निकलते ही उसने देखा कि नीरज वहाँ खड़ा था। उसके हाथों में एक लैपटॉप था, उसने फॉर्मल कपड़े पहने थे और आँखों पर चश्मा लगाए हुए था। वो जल्दी से आस्तिक की गाड़ी के पास आता है और जैसे ही ड्राइवर सीट का दरवाज़ा खुलता है, आस्तिक बाहर निकलते हुए अपने सूट को ठीक करता है। आस्तिक पूछता है, नीरज सब कुछ अरेंज हो चुका है? नीरज जल्दी से सिर हिलाता है और एक टैबलेट आस्तिक की तरफ बढ़ा देता है, जो उसका प्राइवेट टैबलेट है।
आस्तिक अपने टैबलेट पर कुछ करते हुए आगे की ओर बढ़ता है और उसके पीछे पीछे नीरज चल रहा होता है। वो लोग सेकंड फ्लोर पर पहुंचते हैं। वहां पहुंचते ही नीरज एक दरवाजा खोलता है और आस्तिक कमरे में दाखिल होता है। कमरे में पहले से ही एक शख्स मौजूद था जिसकी उम्र करीब 40 साल थी, मगर उसका चेहरा अब भी 30 का लगता था। वो खड़ा होकर मुस्कुराता है और कहता है, हेलो आस्तिक, कैसे हो? आस्तिक भी मुस्कुराते हुए टैबलेट नीरज को लौटाता है और हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, मैं ठीक हूँ अर्जुन, आप कैसे हैं? अर्जुन सभरवाल आस्तिक के साथ लीगल और इलीगल कामों में जुड़ा हुआ है। भले ही उम्र में वो आस्तिक से बड़ा हो, लेकिन आस्तिक उसे उसके नाम से ही बुलाता है। अर्जुन अपनी जगह पर बैठता है और आस्तिक को भी बैठने का इशारा करता है। आस्तिक बैठते हुए अपने कोट का बटन ठीक करता है और पूछता है, तो बताओ, कुछ पता चला? अर्जुन ने लंबी सांस लेते हुए जवाब दिया, नहीं, वैसे तो कुछ खास पता नहीं चला। दरअसल तुम्हारी सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि पता ही नहीं चल पाया कि कौन है जो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। वो तुम्हें जान से मारने के लिए तुम्हारे प्राइवेट फार्म हाउस तक पहुंच गया था। सारा डेटा ऐसे डिलीट किया गया है जैसे कभी था ही नहीं। अर्जुन की बात सुनकर आस्तिक का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो झल्ला कर कहता है, मैं कुछ नहीं जानता अर्जुन, तुम्हारी हैकर टीम इस समय नंबर वन पर है, इसीलिए मैंने तुम्हारी कंपनी को ये काम सौंपा है। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे उस इंसान का पूरा डेटा चाहिए जो मेरे आसपास रहकर मुझे इस तरह बर्बाद करने की साजिश कर रहा है। अर्जुन ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, उसे ढूंढना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसका टारगेट सिर्फ तुम नहीं हो बल्कि अरुणिमा भी है। मैंने वो वीडियो देखी है तुम्हारी एनिवर्सरी की, जिसमें अरुणिमा किसी और आदमी के साथ दिख रही है और उसके कैरेक्टर को खराब करने की कोशिश की जा रही है।